हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगली सुबह निहारिका फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकली ही थी कि उसकी नज़र मृणाल पर चली गई और चेहरे पर सवालिया भाव उभर आए। मृणाल ने भी उसे देखा और सौम्यता से मुस्कुरा दिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, पर ये सब क्या है? जवाब देते हुए निहारिका ने उसके हाथ में पकड़े ट्रे की ओर इशारा करते हुए भौं उछाली। उसका सवाल सुनकर मृणाल ने सहजता से जवाब दिया, तुम्हारा ब्रेकफास्ट। इतनी जल्दी? निहारिका बुरी तरह चौंक गई। बात थी ही हैरानी की, अभी घड़ी 6 ही बजा रही थी और इतनी जल्दी नाश्ता सोचकर ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। तुम भूल गई, तुम प्रेग्नेंट हो तो सुबह सुबह उठकर तुम्हें कुछ खाना चाहिए। नाश्ते में तो देर हो जाती है और इतनी देर तक तुम्हारा भूखा रहना ठीक नहीं है। मृणाल के चेहरे पर संजीदगी के भाव उभरे। फिक्र थी उसे निहारिका और अपने बच्चे की, जिसे निहारिका ने भी महसूस किया और हल्की मुस्कान उसके लबों पर सज गई। मैं तो कुछ नहीं भूल रही, पर अभी मुझे भूख नहीं है। आदत कहाँ है मुझे इतनी सुबह सुबह खाने की? आदत नहीं है तो अब आदत डालो, और खाना नहीं है ना, ये कुछ फ्रूट्स हैं, आओ बैठकर खाओ। मृणाल ने झट से जवाब दिया और ट्रे को टेबल पर रखते हुए उसे भी बुला लिया। उसे इतना गंभीर देखकर निहारिका के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए और उसने बेचारगी से उससे सवाल किया, सच में खाने पड़ेंगे क्या? मृणाल ने ये सुनते ही पलट कर उसे देखा और गंभीर स्वर में जवाब दिया, बिल्कुल, और आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तो पहले हम डॉक्टर के पास चलेंगे, मैं खुद उनसे सारी बातें करूंगा और उसके बाद आज का सारा दिन मैं कुशर तुम्हारे साथ बिताऊंगा। ये सुनकर निहारिका के चेहरे पर खुशी व हैरानी के मिले जुले भाव उभर आए। अरे वाह, इतनी मेहरबानी किस खुशी में की जा रही है हम पर? बात है ही खुशी की, अब तुमने मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज दी है तो बदले में इतना तो बनता है ना। मृणाल की निगाहें उसके पेट पर ठहरी थी। एक एहसास था जो उसके मन को उत्साह से भर गया था। उसके चेहरे पर उसकी खुशी झलक रही थी और लबों पर गहरी मुस्कान सजी थी। मृणाल का ये रूप नया था निहारिका के लिए। उसे इतना खुश और एक्साइटेड उसने पहले कभी नहीं देखा था। निहारिका अपलक उसे देखती ही रह गई। इतना खुश हो तुम? उसका ये सवाल सुनकर मृणाल की खुशी और बढ़ गई और लबों पर ठहरी मुस्कान भी गहरा गई। इससे भी ज्यादा, और जब कुश को पता चलेगा कि तुम उसके लिए छोटा भाई या बहन लाने वाली हो तो वो भी बहुत खुश होगा। मृणाल का जवाब सुनकर अनायास ही निहारिका के मन में कल की कुश की बात घूमने लगी जब वो धृति से बात कर रहा था। तुम्हें पता है वो बहन चाहता है, कल धृति से कह रहा था कि उसके लिए बहन ला दे। बड़ा हो रहा है ना, बाकी बच्चों को देखता होगा तो बहन की कमी खलती होगी। वैसे मेरी भी कोई बहन नहीं थी, मैं अब तक बहन के लिए तरसता हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि उसे कैसा महसूस होता होगा। अगर हमारी बेटी होती है तो कुश की जिंदगी की ये कमी पूरी हो जाएगी और हमारे परिवार में 2 पीढ़ी के बाद कोई लक्ष्मी आएगी, क्योंकि मेरे पापा की भी कोई बहन नहीं थी, मेरी भी नहीं थी। और अगर बेटा हुआ तो ये 3री पीढ़ी होगी जब तुम्हारी फैमिली में कोई बेटी नहीं होगी, है ना? निहारिका ने गंभीरता से सवाल किया। ये सुनते ही मृणाल के चेहरे के भाव कुछ बदल गए। क्यों भाई, हम फिर से कोशिश करेंगे, क्या पता बेटी हो जाए। अच्छा? निहारिका ने भौं उछालते हुए जरा हैरानी जाहिर की। जवाब में मृणाल झट से बोल पड़ा, हाँ और नहीं तो क्या, अगर मेरे के लिए एक बार हो सकता है तो 2 बार भी हो सकता है, और तुमने कंसीव कर लिया मतलब ये नामुमकिन तो नहीं है, बस हमें कोशिश करते रहना होगा। मृणाल ने बड़ी ही लापरवाही भरे अंदाज में बेफिक्री से जवाब दिया, जैसे ये आम सी बात हो उसके लिए। निहारिका फटी आंखों से पहले तो उसे देखती ही रह गई, फिर खींचते हुए तल्ख लहजे में बोली, हाँ कोशिश करते रहेंगे तब तक जब तक बेटी होने की तुम्हारी ख्वाहिश ना पूरी हो जाए, चाहे उसके पीछे यहाँ बच्चों की फौज ही क्यों ना खड़ी हो जाए। मृणाल अब चौंकते हुए अपने सेंसेस में लौटा। नजर निहारिका के नाराजगी भरे चेहरे पर पड़ी। वो तो बस निहारिका को छेड़ रहा था, पर बोलते बोलते किन्हीं ख्यालों में खो गया था। जब निहारिका के खफा खफा चेहरे पर नजर पड़ी तो वो हौले से मुस्कुरा दिया, अरे तुम तो नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था यार, चलो अब मुझे घूरना बंद करो और इसे खत्म करो, मैं जरा कुश को उठाकर फ्रेश करवा दूं। मृणाल ने उसे बेड पर बिठाकर ट्रे थमा दी और खुद कुश को अपनी बाहों में उठाए वहां से गुल हो गया। निहारिका ने बेबसी से अपने सर को इनकार में हिलाया और फ्रूट्स खाने लगी। मुंबई, अर्नव धृति का कमरा। अर्नव जी, भूख लगी है मुझे, और कितनी देर लगेगी आपको? बेड पर बैठी धृति मुंह फुलाए बाथरूम की ओर देख रही थी। अगले ही पल अंदर से अर्नव की आवाज आई, आ रहा हूँ, थोड़ा तो सब्र करो, अब तो तुम बाथरूम में भी मुझे चैन से नहीं रहने दे रही। बोलने के लहजे में वो कुछ खींझा हुआ लग रहा था, पर धृति को अपनी खाने से मतलब था। उसने चिढ़ते हुए नाक से कोड़ी, बाथरूम रहने के लिए नहीं होता है, और आप आधे घंटे से अंदर बंद होकर कर क्या रहे हैं, कहीं सो तो नहीं रहे? हाँ मैं सो रहा हूँ, और तुम्हें जवाब मेरा भूत दे रहा है, अर्नव ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। धृति ने फिर मुंह बनाते हुए उसे आवाज लगाई, क्या कर रहे हैं आप इतनी देर से अंदर बंद होकर, जल्दी बाहर आइए ना। सो रहा हूँ, अभी तुम्ही ने तो कहा था, अर्नव ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। अब की बार धृति उसके इस व्यवहार से खींच उठी। आप इरिटेट मत कीजिए मुझे, जोरों की भूख लगी है मुझे, पेट दुखने लगा मेरा। अगर अभी खाने को कुछ नहीं मिला तो गैस बन जाएगी मेरे पेट में, फिर मैं सारा दिन परेशान रहूंगी। अगर आप मुझे कुछ खाने को नहीं ला कर देंगे तो मैं खुद नीचे जा रही हूँ, अब आपका और इंतजार नहीं किया जाएगा मुझसे। धृति की आखिरी की बात सुनते ही अर्नव के सुर बदल गए। उसने सख्त लहजे में धृति को चेतावनी दे डाली। खबरदार, जो बेड से नीचे कदम भी रखा, आ रहा हूँ बाहर एक मिनट में। धृति मुंह फुलाए उदास सी बैठ गई। अगले ही पल दरवाजा खुला और अपने भीगे बालों को टावल से पोंछते हुए अर्नव ने कमरे में कदम रखा। इसके साथ ही धृति व्याकुलता से उससे पूछ बैठी, इतनी देर से अंदर बंद होकर क्या कर रहे थे आप? उसके रुख पर नाराजगी के भाव थे और गालों को फुलाए वो अर्नव को घूरने लगी थी। अर्नव जो पहले ही कुछ फ्रस्ट्रेट सा लग रहा था, उसका सवाल सुनकर खींच उठा। तुमने जो सुबह सुबह मुझे गंगा जल से स्नान करवाया था ना, उसकी खुशबू नहीं जा रही थी और वो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी, इसीलिए नहा रहा था। इसके साथ ही कुछ देर पहले का दृश्य धृति की आंखों के सामने किसी चलचित्र की भांति घूमने लगा। असल में धृति की आंख खुली तो उसे अजीब सा लग रहा था। वो मुंह पर हाथ रख के हड़बड़ी में बाथरूम की ओर बढ़ रही थी। अचानक ही बाथरूम का दरवाजा खुला और अर्नव एकाएक उसके सामने आ गया। धृति अचानक उसके ऐसे सामने आने पर इस कदर चौंकी कि अनजाने में उसके ऊपर ही वॉमिट कर दिया। बेचारा अर्नव तो कुछ समझ ही न सका और बिना किसी गलती के ये सजा और मिल गई उसे। धृति तो बाथरूम में भाग गई, पर वो शॉक सा वहीं खड़ा रह गया। उसके बाद कमरे को साफ करने से लेकर अपने कपड़े धोने तक सब काम उसी ने किया था। धृति को भी उसी ने संभाला था। सब याद आते ही धृति के तेवर कुछ बदले और लहजा नर्म हो गया। आप ताने क्यों मार रहे हैं मुझे? मैंने जानबूझकर थोड़े ना किया था। आप ही अचानक मेरे सामने आ गए तो मैं रोक नहीं सकी। उस बारे में बात मत करो, खुद से घिन होने लगती है मुझे। अर्नव ने बुरा सा मुंह बनाते हुए बात को रफा दफा करना चाहा। बेचारे की सुबह इतनी खराब हुई थी कि सोचकर ही उसे घिन आने लगती थी। अर्नव की बात सुनकर धृति का चेहरा उतर गया। अर्नव का ध्यान उसके उदास मुरझाए हुए चेहरे पर पड़ा तो कुछ सामान्य हुआ।
अब तुम क्यों उदास हो गई? अर्नव ने चौंकते हुए सवाल किया। धृति ने अपनी निगाहों को झुका लिया और मायूसी भरे धीमे स्वर में कहने लगी, मैं अब से आपके साथ नहीं सोऊंगी, मॉम के साथ सोऊंगी। क्यों? अर्नव एक बार फिर चौंक गया और आंखें हैरत से फैल गईं। आपको मेरे वजह से परेशानी हुई ना, इसलिए। ऐसा तो पहले भी हुआ है, पर मॉम ने कभी नहीं कहा कि उन्हें घिन होती है। वो कभी मुझ पर नाराज़ भी नहीं हुई, ऐसे चिढ़कर मुझ पर गुस्सा भी नहीं करती। धृति इस वक्त छोटी सी मासूम बच्ची लग रही थी, जिसका कोमल मन उसके रूड बिहेवियर से आहत हो गया था, और अब वो दुखी थी। अर्नव को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। शायद कुछ ज़्यादा बेरुखी कर गया वो उसके साथ। अच्छा बाबा, सॉरी ना, अर्नव ने बात संभालने की कोशिश की, पर धृति ने मायूसी से इनकार में सर हिला दिया। नहीं, मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए। आप आराम से बिना किसी परेशानी के यहाँ अपने कमरे में रहिएगा, मैं मॉम के साथ रह लूँगी। धृति, अर्नव ने फिर कुछ कहना चाहा, पर जब नज़र धृति की आंसुओं से भीगी सुर्ख आँखों पर पड़ी तो उसके आगे के शब्द कहीं गुम गए। मुझे बात नहीं करनी आपसे, आपको मालूम है मुझे कितनी परेशानी होती है। शुरुआती वक्त में क्या कुछ सहा है मैंने, आप तो वो सब देखने और मुझे संभालने के लिए यहाँ थे ही नहीं। सब कुछ मैंने अकेले फेस किया है। उस वक्त दो मिनट चैन से बैठकर खाने को तरस गई थी मैं। ज़रा सी खुशबू बर्दाश्त नहीं होती थी मुझसे, कुछ भी खाती तो वॉमिट हो जाती थी। पेट अलग दर्द करता था, फिर भी मैंने सब कुछ सहा। मैंने तो कभी इन सब के लिए कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि ये हमारा बच्चा था और मैं उसे इस दुनिया में लाना चाहती थी, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े। मैं 9 महीने सब सहती रही, कभी आपसे कुछ नहीं कहा, पर आज आपको मेरे कारण ज़रा सी परेशानी क्या हो गई? आप इरिटेट हो गए मुझसे, गुस्सा करने लगे मुझ पर, घिनाने लगी आपको। जाइए आप यहाँ से, इतना वक्त मैंने अकेले स्ट्रगल करके बिता लिया है, तो अकेले बिना आपकी किसी मेहरबानी के अपने बच्चे को जन्म भी दे दूंगी। प्रेगनेंसी की शुरुआत से धृति के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया था। पहले शांत रहने वाली धृति अब ज़रा ज़रा सी बात पर भड़क जाती थी। शायद ये सब इसलिए था क्योंकि इस दौरान उसने परेशानियाँ भी बहुत बढ़ी थीं, और उस वक्त जब उसको अर्नव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, अर्नव नहीं था उसके पास, जिसके लिए उसने कभी कोई शिकायत तो नहीं की, लेकिन सब बातें अंदर रखते रखते चिड़चिड़ी सी हो गई थी। अर्नव को वो वक्त आज भी याद था जब उसे धृति की प्रेगनेंसी की बात पता चली थी, पर वो इंडिया से बाहर था और काम में इस कदर उलझा था कि 3-4 महीने तक लौट नहीं सका था, और उस दौरान टाइम में अंतर होने के कारण धृति से उसकी ठीक से बात नहीं होती थी। इस तरह अपनी प्रेगनेंसी का सबसे बुरा और कठिन दौर धृति को अकेले काटना पड़ा था। अर्नव के चेहरे के भाव कुछ नर्म पड़ गए, मन कुछ उदास हो गया। उसने गहरी सांस छोड़ी और धृति के पास आकर बैठ गया, फिर प्यार से उसकी हथेली को थामते हुए कोमल स्वर में उसे समझाने लगा। सॉरी धृति, मेरा तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तुमसे घिन नहीं कर रहा था और ना ही तुम्हारी वॉमिटिंग के कारण इरिटेट हुआ था। तुम बार बार सवाल पूछकर परेशान कर रही थी मुझे, बस इसीलिए थोड़ा चिढ़ गया था। आई नो हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए तुमने बहुत कुछ सहा है और अभी भी सह रही हो। आई नो जब मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था तब मैं तुम्हारे पास नहीं था, जिसका गिल्ट आज भी है मुझे। तुम्हें सब अकेले फेस करना पड़ा। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मैंने तुम्हारे साथ बहुत कम वक्त गुजारा है। गलतियां और अनजाने में लापरवाही हुई है मुझसे। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई प्रॉमिस आगे से मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम्हारे और हमारे बच्चे से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मैं अब से तुम दोनों का बहुत ख्याल रखूंगा, तुम्हारा साथ निभाऊंगा। बस इस बार माफ कर दो। दोबारा नहीं कहेंगे कि आपको घिन होती है मुझसे, गुस्सा नहीं होंगे मुझ पर। मैं जानबूझकर कुछ भी नहीं करती, हो जाता है, मैं क्या करूं। मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगता, मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ, पर जब तक बेबी इस दुनिया में नहीं आ जाता मुझे ये सब सहना ही होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। धृति ये सब बोलते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि किसी को भी उस पर प्यार आ जाए। अर्णव ने अब उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया और बड़े ही प्यार से उसकी आंखों से आंसुओं को चुराने लगा। आई नो, और अब इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम पर बिल्कुल भी नाराज नहीं होऊंगा और गुस्सा भी नहीं करूंगा। चलो अपनी ये उदासी छोड़ो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, तब तक तुम ये खाओ। अर्णव ने साइड टेबल के ड्रॉअर से बिस्किट्स निकालकर उसे पकड़ा दी और प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए कमरे से बाहर चला गया। जितनी जल्दी धृति उससे नाराज हुई थी उतनी ही जल्दी मान भी गई थी, और यही सबसे बड़ी राहत की बात थी उसके लिए कि जितनी जल्दी उसे गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता था। अगर उसे कुछ चाहिए था तो वो था अपनी जिंदगी के इस कठिन दौर में अर्णव का साथ और प्यार। जैसे ही उसे ये दोनों चीजें मिलती वो सब भुलाकर खुश हो जाती थी। धृति ने एक दो बिस्किट खाए, फिर अपने पेट को अपनी हथेली से सहलाते हुए खुद ही खुद में मुस्कुराने लगी। माँ बनना, एक बच्चे को खुद में धारण करना, उसे महसूस करना खुद में ही एक अलग, खास और बेहद खूबसूरत अनुभूति थी। अपने बच्चे का होने का एहसास ही उसके सारे दुख और परेशानियों को हर लेता था और मन प्रसन्न हो उठता था। कुछ देर बाद अर्णव वापस कमरे में आया और धृति को देखकर मुस्कुरा दिया। लीजिए मैडम, आपका नाश्ता तैयार है, क्या लाए हैं आप मेरे लिए? धृति ने बड़ी ही उत्सुकता से सवाल किया। अर्णव ने ट्रे उसके सामने रख दी। पोहा था जिसमें मूंगफली, बीन्स और आलू को छोटा छोटा काटकर फ्राई करके डाला हुआ था। कड़ी पत्ते की खुशबू भी आ रही थी। देखने में लगा हुआ लजीज लग रहा था, खाने में तो शायद उससे भी मज़ेदार होगा। साथ ही फ्रूट चाट और एक ग्लास मिल्कशेक भी था। धृति अपना नाश्ता देखकर खुशी से चहक उठी, क्योंकि जानती थी कि ये अर्णव ने बनाया है उसके लिए, और उसका किया छोटा छोटा काम भी उसे खुशी देता था। उसे एहसास करवाता था कि वो उसकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है और उसे उसकी कितनी परवाह है। आराम से बैठकर अपना नाश्ता करो, उसके बाद नीचे चलेंगे हम। अर्णव की बात सुनकर धृति ने नजरें उसकी ओर उठाई और सौम्य सी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए बोली, आप खिलाइए मैं। अर्णव ने चौंकते हुए आंखों को बड़ा बड़ा किया। धृति ने मुस्कुराते हुए सहमति में सर हिलाते हुए हामी भर दी, तो अर्णव भी मुस्कुराते हुए उसके पास ही बैठ गया। ओके चलो, तो आज अपनी बीवी और बच्चे को मैं अपने हाथों से खिला देता हूँ। अर्णव ने स्पून में पोहा लेकर उसकी ओर बढ़ाया तो धृति ने झट से उसे खा लिया। बहुत टेस्टी बना है। इस वक्त उसका चेहरा आकाश में मौजूद चांद सा रोशन था, लबों पर गहरी मुस्कान ठहरी हुई थी, उसकी खुशी देखने लायक थी। अर्णव अपनी मासूम सी बीवी के खुशी से चहकते चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया। ये चंद छोटे छोटे लम्हे ही उनके रिश्ते की खूबसूरती को बढ़ा देते थे। एक दूसरे के साथ बिताया हर लम्हा उनके लिए खास होता था। टू बी कंटिन्यूड।